पिछले अध्याय में आपने देखा कि सानवी और आर्यन के बीच डांस होता है और आर्यन को सानवी की प्रतिभा का पता चलता है। अब आगे रणबीर कपूरिया और जेसिका हॉल में आते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है। आर्यन, सानवी और डेलाक्रुआ परिवार आर्यन के घर कॉफी पीने जाते हैं। अयान जोया से शादी करने का फैसला करता है। सानवी और आर्यन के बीच गलतफहमी पैदा होती है। सानवी आर्यन का काम छोड़ देती है। रिया सानवी को उस आदमी के घर दोबारा कदम रखने से मना करती है। वेद गौतम को अपनी टीम बनाने के लिए कहता है। अयान जोया के सामने आकर बैठ जाता है। नाउ नेक्स्ट, जोया पहली सैंडविच खा रही थी, मगर जैसे ही उसने अयान को आते देखा उसका मन उचट गया। उसने प्लेट किनारे रख दी और कॉफी का कप उठा लिया। चेहरे पर हल्की सी नफरत और बेजारी साफ झलक रही थी। अयान दोनों भाभियों से बातें करता रहा, मगर उसकी आंखें तो सिर्फ जोया को तलाश रही थी। जोया जो जिद करके उसे नज़रअंदाज कर रही थी, कभी कॉफी की चुस्की तो कभी फोन पर स्क्रॉल। अयान से अब चुप नहीं रहा गया। हल्की मुस्कान दबाते हुए उसने कहा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट अधूरा रह गया है, ऐसे ही छोड़ दोगी? जोया ने फोन नीचे किया और उसकी आंखों में देखा। उसकी ठंडी आवाज में तीखापन छुपा नहीं था। नहीं, मेरा हो गया। उसका रूखापन अयान को और भाया। वो धीमे से हंसा और बिना इजाजत उसकी प्लेट से सैंडविच उठा लिया। बड़े इत्मीनान से एक बाइट लेते हुए बोला, अच्छा तो जो अधूरा छोड़ देती हो उसे पूरा करने का हक मेरा है। जोया कुछ बोल ना पाई, बस उसकी ओर देखने लगी। नुसरत और सहर ने एक दूसरे की ओर चौंकथर देखा। उन्हें तो अयान की इस नज़दीकी में कुछ और ही कहानी दिखने लगी थी। भाभी, आप लोग भी ब्रेकफास्ट कीजिए ना, अयान ने नरमी से कहा और अपनी दोनों भाभियों की तरफ देखा। नुसरत हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखती रही। उसकी निगाहें कुछ पल के लिए अयान और जोया पर टिकी, फिर मजाकिया अंदाज में बोली, तो तुम दोनों ने क्या फैसला किया, तलाक ले रहे हो? जोया की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसने कप को धीरे से टेबल पर रखा, जैसे किसी ने उसकी सांसें थाम ली हों। मगर अयान ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। तुरंत बिना झिझक उसकी आवाज में पूरा यकीन झलक रहा था। क्यों, कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा सा छा गया। जोया की नजरें अनचाही ही अयान की आंखों से टकरा गईं। उनमें एक जिद, एक अपनापन और एक अजीब सी मोहब्बत थी। जोया चाहकर भी उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। भाभियां हैरान थीं, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान थी। उन्हें साफ साफ लग रहा था कि ये रिश्ता अभी टूटा नहीं, बल्कि कहीं गहराई में और मजबूत होता जा रहा है। जोया ने कप को जोर से टेबल पर रखा। आंखों में नमी और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हर शब्द जहर की तरह था। मगर मुझे तलाक चाहिए अयान। वो एक पल भी वहां और नहीं ठहर पाई। कुर्सी खिसकाकर तेजी से उठी और सीधे आरिफ भाई और श्यान भाई की टेबल पर जाकर बैठ गई, जहां तीनों लड़कियां पहले से मौजूद थीं। अयान कुछ कह भी नहीं पाया। उसकी नजरों के सामने जोया की पीठ दूर जाती रही और उसके सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। जोया का दिल तेज धड़क रहा था। वो हर वक्त उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। पहले उसकी बेवजह की रूडनेस, हर वक्त ताने मारना, सीधे मुंह कभी बात तक न करना और अब अचानक ये अजीब सा पीछा करना, कल बैग उठाना, आज उसके पीछे पीछे घूमना। वो खुद से बुदबुदाई, कल तक जिसे मेरी परवाह नहीं थी आज वही कह रहा है तलाक नहीं लेगा, अब क्यों, किस हक से? उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, मगर उसने तुरंत उसे पोंछ दिया। कमजोरी दिखाना उसे बर्दाश्त नहीं था। बहुत अच्छा लिखा आपने। सीन में जोया भी तलाक मांगने के बाद अयान का शांत रहना और भाभियों की हैरानी बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैंने आपके टेक्स्ट को थोड़ा और फ्लो और डायलॉग्स के साथ पॉलिश किया है, ताकि इमोशन और क्लियर हो और पढ़ने में और मजा आए। अयान अभी भी वही बैठा हुआ था। जोया ने जिस अंदाज में उससे तलाक की बात कही थी, वो किसी और को होता तो कब का गुस्से से फट पड़ता, मगर अयान बिल्कुल शांत बैठा बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसका इतना चुप और ठंडा रहना नुसरत और सहर दोनों भाभियों को हजम नहीं हो रहा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्से से भड़कने वाला अयान आज जोया के इतने बड़े ऐलान पर भी कुछ नहीं बोला। नुसरत ने हैरानी से कहा, तुमने तो अपना इरादा बदल दिया है अयान, मगर वो लड़की तो तुमसे साफ कह चुकी है कि उसे तलाक चाहिए, पहले तुम ही तो कह रहे थे। सहर ने भी हामी भरते हुए कहा, सही बात है। अयान ने उनकी तरफ देखा, होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और मासूमियत से बोला, मैं आपका इकलौता देवर हूँ, कुछ तो कीजिए ना, मुझे तलाक नहीं लेना उससे। उसका चेहरा बिल्कुल बच्चे जैसा हो गया था। सहर ने कंधे उचकाते हुए कहा, हम क्या कर सकते हैं, फैसला तो जोया का है। अयान ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मगर इतना जरूर पता है कि मुझे उससे तलाक नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नुसरत ने चौंक कर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? अयान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, उसी के पीछे, वहीं तो बैठी है, और वो सीधे उस टेबल की तरफ बढ़ गया जहां जोया बैठी थी। नुसरत और सहर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। सहर धीमे से बोली, सचमुच ये वही अयान नहीं रहा जैसे हम जानते थे। एटीट्यूड तो जैसे उसमें से गायब ही हो गया है। नुसरत ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब इसमें सिर्फ मोहब्बत बची है। अयान भारी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ा जहां जोया आरिफ भाई, शान भाई और बाकी लड़कियों के साथ बैठी थी। सबने उसकी तरफ देखा मगर उसकी नजरें सिर्फ जोया पर थीं। वो जाकर बिना पूछे उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जोया ने पल भर को उसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। अयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जोया तुम जो कह रही हो शायद तुम्हें सच में लगता है कि यही सही है, मगर मैं साफ कह रहा हूँ मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। आरिफ भाई और शान भाई एक दूसरे को देखने लगे। माहौल अचानक बहुत गंभीर हो चुका था। जोया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, ये रिश्ता मेरे लिए बोझ है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अयान ने उसकी बात बीच में काट दी, नहीं जोया बोझ मैं था रिश्ता नहीं, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें कभी सीधी तरह से इज्जत नहीं दी, हमेशा रूढ़ रहा। उसकी आवाज़ थोड़ी भर्रा गई, मगर आज मैं साफ कह रहा हूँ अब मैं वही अयान नहीं रहा, और अगर मुझे जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पीछे घूमकर अपनी गलती माननी पड़े तो भी मंजूर है, बस तुम्हें खोना मंजूर नहीं। जोया के चेहरे पर हल्की सी कमकपी दौड़ गई, उसने अपनी मुठियां भींच ली, आंखों में आंसू थे मगर उसने उन्हें जाहिर नहीं होने दिया। बाकी सब लोग चुपचाप इस टकराव को देख रहे थे। नुसरत और सहर दूर से खामोशी से मुस्कुरा रही थी, जैसे दोनों को यकीन हो गया था कि अब इस सिद्धी लड़के को सिर्फ प्यार ही झुका सकता है। जोया गुस्से से खड़ी हुई और वहां से निकल गई। उसके चेहरे पर आंसुओं और गुस्से का मिला जुला असर साफ छलक रहा था। अयान पीछे से आवाज देना चाहता था मगर उसके कदम जैसे जमीन से बंध गए। उधर वेद के कमरे में माहौल बिल्कुल अलग था। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और टेबल पर कागजात, पेन और फाइलें बिखरी हुई थीं। गौतम एक वकील को लेकर आया था। वकील के सामने रुचिका और सुधीर बैठे थे। वेद ने हल्के इशारे से गौतम को बाहर जाने का इशारा किया। गौतम चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ चार लोग थे, वेद, रुचिका, सुधीर और वकील। कुछ ही देर में दरवाजा फिर से खुला और दीपक और सुधांशु भी वहां आ गए। माहौल और गंभीर हो गया। वकील ने अपनी चश्मा सीधा करते हुए कागज खोला और धीमी मगर सख्त आवाज में पढ़ना शुरू किया। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट साफ है। नंबर एक, आप दोनों का एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा। नंबर दो, आप दोनों को अपनी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की पूरी छूट होगी, लेकिन आपस में इज्जत और ख्याल रखने की जिम्मेदारी दोनों की होगी। नंबर तीन, अगर आप दोनों में से किसी ने तलाक लेना हो तो वो सिर्फ आपसी सहमति से ही होगा। एक तरफा फैसला इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकेगा।
नंबर चार, अगर आप दोनों का बच्चा होता है या फिर रुचिका जी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये रिश्ता अपने आप स्थायी हो जाएगा और तलाक का विकल्प खत्म हो जाएगा। वकील अगली शर्त पढ़ने ही वाला था कि तभी रुचिका ने गुस्से में बीच में टोक दिया, रुकिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखिए हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनेगा, सुधीर मुझ पर कभी पति का हक नहीं जता सकेगा। वेद की आखिरी लाइन पर कमरे का वातावरण और भारी हो गया। रुचिका और सुधीर दोनों चुप हो गए।